परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक के अध्ययन में हमने देखा है कि राजा नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का राजा है, उसने स्वप्न देखे और उसके अर्थ को दानियल नबी ने बताया। और इतना ही नहीं, आगे हमने यह भी देखा कि उसने एक बड़ी मूरत बनवाई और सबको दंडवत करने के लिए कहा गया। और तब दानियल के तीन मित्र सद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो परमेश्वर के भक्त थे, उन्होंने मूर्ति को दंडवत नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें आग के भट्ठे में डलवा दिया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्ठे से भी बचा लिया। और तब हमने देखा कि फिर से राजा नबूकदनेस्सर स्वप्न देखता है। तो इस प्रकार से हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए, अपने जीवन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है। क्योंकि आज जब हम इस संसार की ओर अपने नजरों को उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, परंतु आपने हमें यह जीवन दान दिया है जो आपकी दया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आज के अध्ययन को सीखने के लिए, सुनने के लिए आप बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार की व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, जिस प्रकार आप दानियल की पुस्तक के द्वारा हमें सिखा रहे हैं उनसे भी आप बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ें। हम नबूकदनेस्सर राजा का दूसरा स्वप्न को देख रहे हैं। उसने एक विशाल वृक्ष देखा जो स्वर्ग तक ऊंचा था और उसकी छाया से पूर्ण पृथ्वी पर छा रही थी। उसके नीचे पशु विश्राम करते थे और उसकी डालियों में आकाश के पक्षी बसेरा करते थे, परंतु वह वृक्ष काट कर गिरा दिया गया। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य जान ले और मान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्यों में प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे राज्य दे देता है। वरन छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठा देता है। तो आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद को निकाल लें। दानियल 4 उसके 17 पद में लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। जी हाँ, नबूकदनेस्सर के स्वप्न से हमें 3 बातें सीखने की आवश्यकता है। पहला, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। यदि आप यह सोचें कि परमेश्वर आज सब कुछ छोड़कर इस जगत से वैराग्य ले चुका है तो आपका यह विचार गलत है। यह जगत उसके बंधन से मुक्त नहीं है। इमर्सन ने जो कहा वह गलत था कि परिस्थितियां मनुष्य की लगाम पकड़े हुए है, लगाम किसी और के हाथ में है और वह जगत को नियंत्रण में रखे हुए है। भजन संहिता 2 उसके 4 से 6 पद में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर कहता है कि वह इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। वह शैतान को अपने भयानक षड्यंत्र को पूरा करने की अनुमति दे रहा है क्योंकि उसमें उसका एक निश्चित उद्देश्य है। परमेश्वर आज अपने सृजित बुद्धिजीवों पर कुछ प्रकट करना चाहता है। शैतान के बारे में अनेक निरर्थक बातें कही जाती हैं, जो धर्मशास्त्र से संगत नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभुताएं उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट करना चाहता है कि वह इस संसार के राज्यों पर प्रभुता करता है। दूसरी बात हम सीखते हैं, उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। देश में कोई भी दल राज कर रहा है या कर रहा हो, वह परमेश्वर की इच्छा से ही सत्ता में है। पूर्व काल में अनेक राजा सोचते थे कि वे परमेश्वर के स्थान पर राज्य कर रहे हैं। जी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें उस स्थान पर बैठाया है। रोमियों की पत्री 13:1 में पौलुस कहता है, कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर कुछ अधिकारों के हाथ में सत्ता क्यों देता है, या यूं कहें कि कुछ अधिकारियों के हाथ में सत्ता क्यों दे देता है। यह प्रश्न अलग बात है। अब तीसरी बात हम जो सीखते हैं, वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मेरे मित्रों, यह गद्यांश मनुष्य जाति को दीन बनाने के लिए है। यदि आप यह सोचते हैं कि आपने सर्वोत्तम व्यक्ति को चुना है तो यह आपका भ्रम है। आप इतिहास पढ़ करके देख लें, क्योंकि परमेश्वर छोटे से छोटे को सिंहासन पर बैठाता है। इसलिए हमारे शासक हमें मिलते हैं, हम इसी योग्य हैं। मनुष्य अपनी सरकार की आलोचना करता है, परंतु हम ही तो सरकार को चुनते हैं। परमेश्वर की इस बात से वह छोटे से छोटे को सिंहासन पर बैठाता है। हमें दीन बनना चाहिए। क्या आपने कभी सुना कि कोई मनुष्य नेताओं को यह पद पढ़कर सुनाता है कि उसे उनका अनुग्रह प्राप्त हो? जी नहीं, यह पद अत्यधिक अप्रिय पद है, परंतु इतिहास इस पद को सत्यापित करता है। सोने का सिर नबूकदनेस्सर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तथापि वह एक अति बुद्धिमान राजा था और संसार का प्रथम विश्व शक्ति था। उसके जीवन में ऐसा भी समय था जब वह पागलपन के कारण यह भी भूल जाता था कि वह कौन है। हम पहले देख चुके हैं कि अनेक विश्व शासकों के साथ भी ऐसी ही समस्या थी। परमेश्वर समयों और कालों से स्पष्ट कर रहा है कि वह छोटे से छोटे को भी सिंहासन पर बैठाता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतससर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। मेरे प्रियो, अब दानियल नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बतलाएगा। दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ निर्धारण। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, तब दानियल जिसका नाम बेलतससर भी था घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतससर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतससर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। स्वप्न सुनकर दानियल को दुख हुआ, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर उसका मित्र बन गया था और वह नबूकदनेस्सर का प्रधानमंत्री था। उसका पहला जुबान तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा था, परंतु यह जुबान उसको तुच्छ बनाता था। अतः दानियल अर्थ बताने से संकोच कर रहा था। दानियल संपूर्ण सच छिपाने की परीक्षा में था, परंतु वह उसे पूरा का पूरा सुनाता है। डॉक्टरों के सामने एक प्रश्न सदैव उत्पन्न होता है कि वे अपने रोगियों से सच छिपाएं या बताएं। मेरा एक डॉक्टर है जो कहता है कि यदि वह सच नहीं बताएगा तो रोगी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ रोगी ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनका डॉक्टर शुभ शुभ बोले। दानियल राजा को सच तो बताता है, परंतु बड़ी युक्ति के साथ। पहले वह कहता है कि स्वप्न में निहित अच्छाई तो उसके शत्रुओं के लिए है। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 20 से 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। यहां पेड़ राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। वह अत्यधिक शक्तिशाली और महान राजा था। उसकी छत्रछाया में उस युग का संपूर्ण सभ्य जगत था। यह स्वप्न नबूकदनेस्सर और उसकी प्रभुता से संबंधित था। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 4 उसके 23 और 24 पद में, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओस से भींगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है, मेरे प्रियो वह पेड़ नबूकदनेस्सर काटा जाएगा, क्योंकि पेड़ नबूकदनेस्सर है परंतु त्यागा नहीं जाएगा। नबूकदनेस्सर तो जो 7 वर्ष पशुओं के समान रहेगा, पशुओं के मध्य जंगल में रहना होगा, वह स्वयं को पहचानने के योग्य भी न ठहरेगा। हम आगे पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक 4 अध्याय उसके 25 और 26 पद में कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है तब तो फिर से राज्य करने पाएगा। दानियल उसे स्पष्ट बताता है कि उसे यह स्वप्न क्यों दिखाया गया और उसे यह अनुभव क्यों पाना है। नबूकदनेस्सर ने घमंड से भरकर वह विशाल मूर्ति बनवाई थी और सबको उसकी उपासना करने के लिए विवश किया था। परमेश्वर उसे दीन बनाना चाहता था। जी हाँ, वह राजमहल से निकाला जाएगा और बैल के समान बैलों के मध्य चारागाह में जाकर घास चरेगा। वह पूरी तरह भूल जाएगा कि वह कौन है, परंतु परमेश्वर उसे इस रोग अवस्था में से मुक्ति दिलाएगा और उसे फिर से राजा बनाएगा। मेरे प्रियो, उसका रोग एक प्रकार का पागलपन था जिसमें मनुष्य एक पल प्रसन्नता और मित्रता का प्रदर्शन करता है और दूसरे ही पल वह निर्बुद्धि सा हो जाता है और पशु की नाई हर बात को गलत समझता है। किसी ने इस रोग के लक्षणों को इस प्रकार प्रकट किया है, सहज दुख सहज आनंद। अनेक मनुष्यों में इसका प्रभाव किसी न किसी सीमा तक है। ऐसे मनुष्यों को हम जानते हैं जो कभी कभी तो बड़े प्रसन्नचित दिखते हैं और कभी कभी बड़े खिन्न दिखाई देते हैं। नबूकदनेस्सर का यह विकार सिर में चोट लगने के कारण नहीं था, यह उसके स्वभाव में था। इस रोग में मनुष्य यह भी भूल जाता है कि वह कौन है, फिर ठीक हो जाता है। मानसिक अस्पतालों में कुछ रोगी सोचते हैं कि वे राष्ट्रपति हैं, तो कुछ अपने आप को राजा कहते हैं। नबूकदनेस्सर सोचने लगा कि वह पशु है। इस रोग का एक और लक्षण है, असीम अहंकार और घमंड। दानियल 4 अध्याय के 30 पद से प्रकट है कि यह नबूकदनेस्सर की मनोदशा थी। हमने देखा है कि पद 4 से पद 10 में वह मैं का कितना अधिक उपयोग करता था। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है और यह मनुष्य का दुर्गुण है। रोम के राजा अगस्तुस ने एक नगर को जीतने के बाद कहा था, मैंने उसे ईंटों का पाया और फूस बनाकर रख दिया, उसने उसका सर्वनाश कर दिया था। रोम के एक और राजा के शब्द हैं, मैंने रोम को लकड़ी का पाया और संगमरमर का छोड़ा। घमंड मानव जाति का घातक पाप है। मनुष्य किस बात पर घमंड करे। यर्मिया की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता हूं। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उद्धार घमंड का निवारण करता है। प्रभु यीशु के पास उद्धार पाने के लिए आप आ सकते हैं, और आप आते हैं तो आप में घमंड नहीं होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों के पत्र 2:2 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। हमारे पास बड़प्पन दिखाने को बहुत कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों के पत्र 4:7 में पौलुस लिखता है, क्योंकि तुम में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? तू ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तब आगे हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 10:17 में पौलुस निर्देश देता है, जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। मेरे मित्रों, परमेश्वर की घृणा सूची पर घमंड पहला है। देखिए नीति वचन 6:16-19 में, और तब फिलिपियों के पत्र 2:8 में प्रभु यीशु की दीनता की व्याख्या है। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस मानसिक विकार का एक और लक्षण है कि यह काल चक्र में होता है। नबूकदनेस्सर के साथ 7 का काल चक्र था। हम आगे पढ़ते हैं, 4:27 में, इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन हीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। नबूकदनेस्सर का मन अशांत था, उसके मन में शांति नहीं थी। उसने संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर दी थी। उसके अधिकार को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था, परंतु वह पाप का जीवन जी रहा था। दानियल ने उसे कहा कि उसे पाप से मन फिराना होगा कि उसका अवश्यंभावी दंड रोका जाए। उसके लिए आवश्यक था कि वह परमेश्वर की ओर फिरे और धार्मिकता का जीवन जिए। आशा समाप्त नहीं हुई है, वह परमेश्वर की शांति का अनुभव अभी भी कर सकता है। मेरे विचार में नबूकदनेस्सर के लिए यह परमेश्वर की अंतिम चेतावनी थी। मेरे मित्रों, आज भी अधिकांश मानसिक समस्याएं आत्मिक समस्याओं का परिणाम है, तथापि कुछ लोगों के साथ सिर में चोट लगने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, परंतु अन्य परिस्थितियों में समस्या का मूल मनुष्य की आत्मिक दशा में होता है। यदि वे प्रभु यीशु के पास आ जाएं, तो निश्चय ही उन्हें शांति मिलेगी। परंतु दुख की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वह आपको शांति और विश्राम देना चाहता है यदि आप उसके पास आते हैं और अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो वह आपको शांति देने के लिए हमेशा तत्पर है। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा से भी यही कहा गया कि वह अपने पाप को छोड़ करके परमेश्वर की निकटता में आ जाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं आपके बीच निर्णय के लिए आपके हाथों में समय को छोड़ देता हूँ कि आप आज एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले और उसके द्वारा से अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।